नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्तूब के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। बैठक के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री स्तूब के सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगे। श्री स्तूब भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति स्तूब से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से भारत फिनलैंड संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ अलेक्सेंडर स्तूब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस वर्ष का विषय है संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य और उन्नति। 3 दिन के सम्मेलन में विश्व के नित्य निर्माता और विचारक 6 विषयगत स्तंभों पर विभिन्न प्रारूपों में संवाद करेंगे। रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण में शामिल होने के लिए सेशल्स के विदेश मंत्री बैरी फॉरे और मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफूल भारत पहुंच चुके हैं। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। अमरीकी वायुसेना ईरान पर लगातार भारी हवाई हमले कर रही है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उनके बलों ने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में अमरीका और इसराइल मजबूत स्थिति में है।
We're in a very strong position now.
हमारी स्थिति मजबूत है और उनका नेतृत्व तेजी से खत्म हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि ये जबरदस्त प्रगति है। उनकी मिसाइलें तेजी से नष्ट की जा रही हैं, उनके लॉन्च सिस्टम भी खत्म किए जा रहे हैं। वे अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं, कुछ मामलों में वे अपने सहयोगियों पर भी हमला कर रहे हैं।
In some cases, allies.
इसराइल की वायुसेना ने ईरान पर फिर हमले किए। इसराइल के रक्षा बलों ने तेहरान में ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इससे पहले इसराइल की वायुसेना ने ईरान के इस्फहान और काम में मिसाइल लॉन्चर और रक्षा प्रणाली पर हमला किया था। इसराइल ने लेबनान में कई कमान केंद्रों पर भी हमले किए हैं। उसका कहना है कि इन कमान केंद्रों का इस्तेमाल हिजबुल्ला को इसराइल के रक्षा बलों तथा इसराइल के नागरिकों के खिलाफ साजिशों में किया जा रहा था। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल और अमरीका ईरान के शासन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मसाला में अंतिम दर्शन के लिए ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। दिवंगत नेता अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमले में मारे गए थे। अंतिम विदाई कल दी जानी थी, लेकिन ईरान और अमरीका इसराइल की संयुक्त सेनाओं के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। श्रीलंका की नौसेना ने ईरान की नौसेना के पोत आयरिस देना के 84 नाविकों के शव बरामद कर लिए हैं। ये पोत श्रीलंका के दक्षिण के समुद्र में अमरीकी पनडुब्बी हमले के बाद डूब गया था। नेपाल में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सहित राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी के रवि लामिछाने ने चूचे पार्टी में और आरएसपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालनेन ने तिनकुने में मतदान किया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्वकप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।